नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 13 से प्रारंभ किया जाएगा। अध्याय 44। पुण्या बत ब्रज भुवो जदयम् निलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्यः गाह पालयन् सह बलः क्वणयंश्च वेणुम् विक्रीडयन् चति गिरेत्र रमार्चिताङ्घ्रिः गोप्यस्तपः किमचरन् जदमूष्य रूपम् लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम् दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवम् दुरापम् एकान्तधाम जशसः श्रियैश्वरस्य या दोहने वहनने मथनोपलेप फृङ्खिङ्खनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकण्ठ्यो धन्या ब्रजस्त्रियो गुरु क्रमचित्तया नः प्रातर्व्रजाद् ब्रजतया विशतश्च सायम् गोभिः समम् क्वायतोऽस्य निशम्य वेणुम् निर्गम्य तूर्ण बबला पथि भूरि पुण्यः पश्यन्ति सस्मित मुखम् सदयावलोकम् एवम् प्रभासमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः शत्रुम् हन्तुम् मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभ। एक साथ सब लोग बोलिए, सभी लोग स्त्री पुरुष सब मेरे साथ बोलिए। पुण्या बत ब्रज भुवो जदयम् निर्लिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्यः गाह पालयन् सह बलः क्वणयंश्च वेणुम् विक्रीडयन् चति गिरित्करमार्चिताङ्घ्रि किमचरन् जदमुष्य रूपम् लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम् दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवम् दुरापम् एकान्तधाम जशसः श्रियैश्वरस्य यादो हने वहन ने मथनो कलेप प्रंखेखनार्भरुदितो क्षण मार्जना गौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रियो उरु क्रम चित्तयाना प्रातर ब्रजात ब्रजतया विशतश्च सायं गोभी समं क्वयतोस्य निशम्य वेणुं निर्गम्य तूर्णमबला पथि भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखं सदयावलोकम्। श्रीसु योगेश्वरो हरिः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभ। एवं स्नेह वशात् अश्रान्ते अपि भगवती श्रमं मत्वा अनवसरे भगवान् अस्माभिर्दृष्ट इति स्वभाग्यं विगर्हयन्त्यः गोकुलवासिनां भाग्यम् अभिनन्दन्ति पुण्यावत इति। ये सुबोधिनी, सुबोधिनी टीका का उपक्रम शरार दर्शनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते। अथ काश्चित् यज्ञ पत्नी सवासना तायव वा तद अवाप्ति संताप स्फुरित तदय स्वर्ज ज्ञाना महाप्रेमवत्यो दृश्यमाना नाम दृश्यमानाम ताम अनीतिम असहमाना ब्रजभुवः तत्रत्य जनांश्च स्तुवानो मथुरायास्तद्वासिनां च निन्दाम अभिव्यञ्जयन्ति पुण्या बतायति। मथुरा की स्त्रियां से रंग स्थल के समाज को, वहां की सारी व्यवस्था को और वहां के लोगों को और राजा कंस को, मल्लों को, सबको विगर्हित कर रहे हैं, निंदित कर रही हैं, निंदा कर रही हैं। और यह करते करते एक प्रकार से मथुरा की भी निंदा करने लगी, ब्रजमंडल को धन्य कह रही हैं। पुण्या बत ब्रज भुवो अहो बत बताए खेद में बोल रही हैं, अहो ब्रज भुवः पुण्या, ब्रज भुवः बहुवचन में ब्रज भूमिया धन्य है, ब्रज भुवः पुण्या परम पावन है, परम पवित्र है। और इस तरह से ब्रज भूमि में रहने वाले गोप गोपी सभी धन्य है। मथुरा में बैठी हुई स्त्रियां ब्रजभूमि की प्रशंसा कर रही। ब्रजभूमि से तत्पर्य है जहां गौएं रहती हैं, वन है, गोचारण जहां होता है, तो ब्रजभुवः पुण्या, ब्रजभूमियां पवित्र है। बहुवचन क्यों बोल रही हैं? क्योंकि ब्रजमंडल के समस्त स्थानों की याद आ रही है, जैसे गोकुल, बृहद वन और वृंदावन, गोवर्धन की घाटियां, श्री गोवर्धन जी, नंदग्राम, काम्य वन इत्यादि भिन्न भिन्न स्थल है जहां घूम घूम करके कृष्ण गौएं चराए, गोपों के साथ क्रीड़ा किए, उनकी याद कर रही है। श्री कृष्ण ब्रजभूमि में, ब्रजमंडल में स्वच्छंद विहार करते हैं, किसी के द्वारा कोई दबाव नहीं है, कोई चिंता नहीं, पूर्ण आनंद में मग्न होकर के वहां वे विविध क्रीड़ा करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और वहां श्री गोपी जनों को श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है जब श्री कृष्ण परम आनंद में रहते हैं। तो मथुरा की स्त्रियां जिनमें योग यज्ञ पत्नियां प्रधान हैं, इन्हें यद्यपि भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है, फिर भी भगवान के विरह से दग्ध रहती हैं। एक बार भतरौड़ में इन्हें दर्शन हुआ, भगवान से बातें हुई, लेकिन वे इस सभा में जब कृष्ण बलराम को इस तरह से सताया जा रहा है और उन्हें पसीना छूट रहा है, वे हांफ रहे हैं विजय प्राप्त करने के लिए चारुण मुष्टि पर, तो वे बहुत दुखी हो रही हैं। अन्य स्त्रियां भी और यज्ञ पत्नियां भी सभी बहुत दुखी हैं। उसी पर वे ब्रजभूमि की प्रशंसा कर रही हैं और उसमें ब्रजभूमि की प्रशंसा में अपने आप मथुरा भूमि की निंदा है। अपने आप पुण्यावत ब्रज हुआ और ब्रजभूमि कह करके यह कह रही हैं, धन्य है ब्रजस्थलियां, ब्रजभूमियां धन्य हैं और वहां के निवासी धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, पर अधन्य है यह मथुरा नगरी और यहां के लोग बिल्कुल पापी हैं, अधन्य हैं। क्यों ब्रजभूमि की महिमा है इसको आगे कहते हैं। पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य गाह पालयन सहबल कोणयश्च वेणु विक्रीड़यांचति गृत रमार्चितांग्री जत जासु ब्रजभूमिषु। जिन ब्रजभूमियों में विविध लीला स्थलियों में नृलिंग गूढ़ नृलिंग एक इसका अर्थ होगा कि मनुष्य रूप में अपने को छिपाए हुए, सामान्य अर्थ ही होगा, लेकिन श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं तो अपने स्वरूप में बिल्कुल रहते हैं। यही स्वरूप है भगवान का, मनुष्य का आकार, नर बपु तहार स्वरूप। श्री कृष्ण का, श्री भगवान का अपना जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वो है नर बपु, नर शरीर। लेकिन सामान्य लोक में लोग समझते हैं कि मनुष्य शरीर धारण किए हैं और अपने चतुर्भुज रूप, अपना ऐश्वर्य सब छिपा लिए, यह अर्थ है नहीं है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, नृलिंगेन स्वरूप लक्षणेन अपि बहिरंग जन ही ज्ञातुं अशक्यत्वात् गूढ़। अपने स्वरूप में है भगवान, लेकिन फिर भी जो बहिरंग लोग हैं, जो श्री कृष्ण के मर्म को ठीक से नहीं जानते हैं, वे उनको जानने में असमर्थ रहते हैं। और इसलिए मथुरा वासिनी नारियां श्री कृष्ण को गूढ़ कह रही, किस चीज से छिपे हुए, निर्लिंग गूढ़, अपने स्वरूप में होते हुए भी, नराकार स्वरूप में होते हुए भी, फिर भी ज्ञातुम अशक्यत्वात् गूढ़, अथवा अप्रकटित वैभव संत। वृंदावन में भगवान अपने वैभव को प्रकट नहीं किए हैं, अपने ऐश्वर्य को। जदवा क्रीड़ा विशेष से न निकुंजादौ अंतरहित सन, अथवा क्रीड़ा विशेष के लिए, विशेष क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए कुंजादि में अपने को छिपा करके रखते हैं, कुंजों में, गिरिराज जी की गुफाओं में, घाटियों में छिपे रहते हैं, इसलिए इनको गूढ़ कहा गया, निर्लिंग गूढ़। मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं कि ये पुरुष जिनको आज यहां लड़ाया जा रहा है, इनको तंग किया जा रहा है, ये वनचित्र माल्य ब्रज भूमियों में, ब्रजमंडल में बहुत सुंदर पुष्पों की माला लगाते हैं, बहुत सुंदर माला है, वहां बारंबार इनको मालाएं दी जाती हैं, माला पहनते हैं, वनचित्र माल्य, वनस्थानी विचित्राणी माल्यानी जस स, विचित्र माला पहनाई जाती है भगवान कृष्ण को, क्षण क्षण में सखा भी नई नई माला पहनाते रहते हैं और अनेक रंगों की और नवीन, और इसलिए चित्र माल्य, विचित्र मालाएं पहनाई जाती हैं, और वृंदा देवी पहनाती हैं वृंदावन में, श्री गोपी जन माला की रचना करती हैं, श्री राधा रानी स्वयं माला बनाती रहती हैं और श्री कृष्ण को भेजती रहती हैं, पहनाती रहती हैं, सर्वत्र माल्यार्पण होता है, माला पहनाई जाती है, कहां इस पुरुष का इतना स्वागत है, इतना आनंद में है यह वनचित्र माल्य, और गिरित्र रमा अर्चितांग्री, जिनके चरण कमल की पूजा गिरित्र भगवान शिव और रमा श्री महालक्ष्मी करती हैं, अर्चित अंग्री जस स, इनके चरण कमल की आराधना शिव भगवान शिव करते हैं, रमा करती हैं, चकार और ब्रह्मा जी करते हैं, सभी करते हैं, प्रकट लीला में भी वृंदावन में शिव जी आते रहते हैं और रमा सेवा करती हैं। रमा से तत्पर्य श्री राधा रानी से भी हैं, कृष्णम रमयति इति सा रमा, जो कृष्ण को रमावे आनंदित करे वो है रमा, इनके द्वारा अर्चित अंग्री चरण कमल की सेवा होती है। अयम श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण नाम के पुराण पुरुष आदि नारायण, भगवान के स्वर्ग को समझ रहे हैं फिर भी मोह हो रहा है, आदि पुरुष आदि नारायण सह बल श्री बलराम जी के साथ गाह चारयन अथवा वेणुं कोणयन गाह चारयन, गौएं चराते हैं बलराम जी के साथ अथवा अपने बल अपनी सेना के साथ गोपों के साथ, इस सुख क्रीड़ा को बता रहे किस तरह से ये क्रीड़ा करते हैं, अपने आनंद में बांसुरी बजाते हैं और खेलते रहते हैं, गाय चराते हैं, तो वहां ये इतने सुखी रहते हैं। बलम सैन्यम गोप वर्ग सहित इत्यादि, गाह च पालयन गौओं का पालन, वेणुम कोणयन बांसुरी बजाते रहते हैं, गाह च पालयन और गौओं का पालन करते हैं, विक्रीड़या विक्रीड़ा विविध गोप क्रीड़ा विचित्र रास आदि क्रीड़ा वा, विविध क्रीड़ा करते हैं, गोपाल की क्रीड़ा जो गाय का पालन करने वाले खेलते रहते हैं वो, अथवा विविध क्रीड़ा रास आदि करते रहते हैं, स्पष्टतया अनुक्ति लज्जया, विविध क्रीड़ा कह रही हैं तो क्यों नहीं कहा कि रास विहार करते हैं और सब करते हैं, लज्जा से नहीं कहे, विविध क्रीड़ा से अंचती, अंचती इति वर्तमान निर्देशेन तत्र पुनः प्रयाण संभावनया, यह पुरुष ब्रजभूमि में ही अंचती, अंचती का अर्थ है क्रीड़ती, खेलता रहता है, वर्तमान क्रिया का प्रयोग कर रही है, यह नहीं कह रही कि पहले खेलते थे या फिर जाएंगे खेलेंगे, अंचती वर्तमान क्रिया का प्रयोग यह बता रहा है कि मथुरा की स्त्रियां इस संभावना में हैं पूरी तरह कि ये यहां से चले जाएंगे अपने घर नंदगांव। तो जिन स्थलों में ब्रजमंडल में यह परम सुंदर पुरुष विविध क्रीड़ा द्वारा खेलते रहते हैं वे ब्रज भूमियां धन्य। इस समय भी तो किसी स्थान पर वे हैं, कंस के रंगशाला में हैं, मथुरा में हैं। तो एक और मथुरा में बहुत से लोग रंगशाला में जुटे हुए हैं, तो इस भूमि की, मथुरा की और मथुरा वासियों की निंदा कर रही हैं। बेकार है ये, आज इस पुरुष को तंग कर रहे हैं, इतना दुख में डाले हैं। लेकिन ब्रजमंडल में तो कोई भी इस तरह से कृष्ण को दुख नहीं देता, वहां तो सुख से बांसुरी बजाते रहते हैं, खेलते हैं, वनमाला धारण करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रास लीला करते हैं, गोचारण करते हैं। अंचति का अर्थ है भ्रमति, घूमते रहते, भ्रमण करते रहते। एक स्थान है ब्रजभूमि जिसमें श्री कृष्ण पूर्ण आनंद में है और अपनी इच्छा से घूमते रहते हैं, परम सुख में है। और एक है ये मथुरा की रंगशाला जो श्री कृष्ण और बलराम के लिए परम दुखद है। यद्यपि श्री कृष्ण बलराम उसमें भी सुख लूट रहे हैं, वो आनंदित है, ये पहलवान आदि उनका क्या करेंगे। लेकिन देखिए भाव प्रेम मथुरा की स्त्रियों का, मथुरा में सभी भगवान के पार्षद हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन इस तरह से कृष्ण को मल्ल क्रीड़ा में फंसाया जा रहा है और परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए मथुरा की निंदा कर रही है और मथुरा वासियों की निंदा कर रही है और ब्रजभूमि की और ब्रजभूमि में रहने वालों की प्रशंसा कर रही है। तत्वतः तद और अपरित्यागादिति ब्रजे नित्य लीला सूचिता है। श्री गोपीजन श्री मथुरा नगरियों के मुख से भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की नित्य लीला का प्रकाशन हो रहा है वर्तमान क्रिया से। ब्रज भुव का अर्थ है ब्रजे भवन्ति जायन्ते इति ब्रज भुव गोप्य एव पुण्या। जिनका ब्रज में जन्म हुआ है वे हैं ब्रज भुव। सीता सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं गोपियां धन्य हैं। स्त्रियां मथुरा की बोल रही हैं तो वे ब्रज की स्त्रियों की प्रशंसा और मथुरा के स्त्रियों की निंदा कर रही हैं। ये अर्थ किए हैं ब्रजे भवन्ति जायन्त इति ब्रज भुव गोप्य एव पुण्या न तु वयम् नागरियो अपीति भाव। वन में जन्म लेने वाली गोपियां धन्य हैं, हम नगर में जन्म लेने वाली मंद भाग्य है, हत भाग्य है। हम नागरी हैं फिर भी नगर में रहती हैं। इस नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं और नागर का संस्कृत में एक अर्थ होता है चतुर बुद्धिमान। श्री कृष्ण को नट नागर कहते हैं, नाचने वालों में बहुत चतुर बहुत श्रेष्ठ। गोवर्धन जब उठाए थे तो उस समय भी नाचने की लीला करने लगे, तो उनको दबा करके मना किया जा रहा था, गिर पड़ेगा ऐसे मत करो। कलिए के फाड़ पर नाच रहे थे, रास लीला में नाच रहे थे, एक व्यक्ति थे और करोड़ों गोपियां थी, पर फिर भी वे नाचने में सफल थे। ऐसा भाव नहीं होता था कि कृष्ण मेरे साथ नहीं है, इसीलिए उनको नटवर या नटनागर कहते हैं परम श्रेष्ठ। अंचति जदवा भ्रमति गच्छति उपभुंगते विक्रीड़या, विक्रीड़या का अर्थ विचित्र विचित्र काम करण इत्यर्थ। जदवा ब्रज भुव सर्वे तत्रत्या वन्य अपि चराचरा। ब्रज भूमि शब्द से यह अर्थ है कि ब्रजभूमि में उत्पन्न जितने भी वन्य प्राणी हैं, चाहे गोपियां हों या गोप हों यहां तक कि मयूर, गौए आदि सब चरा चरा बहुत पवित्र हैं, धन्य हैं। नतु अतृप्त्या जादवादय इत्यर्थ। वन में जन्म लेने वाले सब गोप गोपी और वहां के मयूर कोयल आदि सब धन्य हैं, लेकिन मथुरा में जन्म लेने वाले जादव आदि सब मंद भाग्य। शास्त्र पुराणा पुराणा मेषाम क्षत्रियादीनाम पुराण पुरुषत्वादी ज्ञानेन भय गौरवादी उत्पत्त्या न तादृशी प्रेम संपत्ति घटते। मथुरा में जो जन्म लेते हैं ये सब क्षत्रिय हैं जादव, तो श्री कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं, लेकिन भय गौरव आदि के कारण उनमें वह प्रेम संपत्ति नहीं है जो ब्रजवासियों में। भय रहता है कृष्ण से कि ईश्वर हैं, हमसे बड़े हैं, तो दब करके रहते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन ब्रजवासी गोप और गोपियां जैसे प्रेम करते हैं वैसे कहां कर सकते हैं। और श्री कृष्ण भी मथुरा में लीला करते हैं तो दूसरे की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ता है। बताइए यहां पर दूसरे की इच्छा से, कंस की इच्छा से मल्लयुद्ध कर रहे हैं। अगर मथुरा के सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो दूसरे लोग अगर उनकी स्तुति कर रहे हैं तो अपने से उठकर खड़ा भी नहीं होंगे, बैठे सुनते रहो। तो एक प्रकार की सजा है, लेकिन वृंदावन में भी गोप सखा स्तुति करते हैं श्री कृष्ण की, गीत गाते हैं, तो वो भी बीच में नाचते हैं थिरक थिरक कर। दोनों भाई कृष्ण बलराम नाचने लगते हैं, वे स्तुति कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का, लेकिन श्री कृष्ण उनके साथ नाचने लगते हैं, साथ में गाते हैं। और कभी ये बांसुरी बजाने लगते हैं ताल दे करके, तो बच्चे नाचने लगते हैं, सखा नाचने लगते हैं। ये दोनों भाई भजनिया का काम करते हैं कभी कभी। वेणु गीत में लिखा गया है कि जब मयूर नाचने लगते हैं वृंदावन में तो उनके बीच में श्री कृष्ण भी नाचने लगते हैं। तो श्री कृष्ण नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनके बांसुरी के ताल पर मयूर नाचते हैं, तो नाचने वाला मुख्य होता है, भजनिया अमुख्य होता है। तो वे नाच जब देखते हैं कि बहुत अच्छा बाजा बजा रहा है श्याम सुंदर, बहुत अच्छा बांसुरी, तो वे अपना पंख गिरा देते हैं, तो उसको श्री कृष्ण बहुत बड़ा इनाम मान करके तुरंत ही अपने पगड़ी में खोस लेते हैं, ये इनाम मिला है, बाजा बजाने वाला को इनाम मिलता है। तो श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं कि उनको मोरपंख मिला, नया मोरपंख वे धारण करते हैं, अपना सौभाग्य मान करते हैं। तो इस तरह से वह स्वच्छंद लीला करते हैं, और मथुरा में तो बहुत भारी बंधन है। ब्रज में सभी विशुद्ध भाव वाले रहते हैं, जानते हैं कि ये नंद नंदन है, नंद बाबा के पुत्र है, लेकिन मथुरा वाले तो ओम जय जगदीश हरे वाले हैं, तो ये हमेशा बस स्तुति और बड़ाई ये वो। यह मथुरा में कहां है गोपालन, कहां है बांसुरी वादन, नहीं है, ये तो ब्रजमंडल में ही है। और वन में रहने से वृक्षों की तुरंत की फ्रेश मालाएं मिलती, फूल फ्रेश मिलते हैं, तुरंत माला गुथी जाती है, मालाएं मिलती हैं। वहां ब्रज में गोप कुल साहित्यम, गोप कुमार साहित्यम गोप कुमार साथ में रहते हैं, अतः ब्रजभूमि धन्य है। जदवा गिरे है श्री गोवर्धनाथ त्रायते तब उपधारण समय प्रेम कटाक्षादिना परिश्रमा श्री कृष्णम रक्षति इति गिरित्रा सा च असौ रमा च राधा लक्ष्म्यावतारत्वात् किंवा गिरिणा तेनैव ब्रजम त्रायते इति गिरित्र श्रीकृष्ण तद रमणात् रमा श्री राधा एव इत्यर्थ तया प्रेमणा सेवितांग्री रीति तादृशत्वे चात्र कथम संभवेत। गिरित्र रमार्चितांग्री उसका अर्थ श्री कृष्णनाथ गोस्वामी जी करते हैं। गिरी त्र गिरी का अर्थ है श्री गोवर्धन और त्र का अर्थ है तायते, जो गोवर्धन धारण करके ब्रज की रक्षा कर रहे हैं वे है गिरित्र श्री कृष्ण। तब धारण समय जब गोवर्धन धारण किए थे तो श्री राधा रानी प्रेम कटाक्ष आदि के द्वारा श्री कृष्ण को देखती हैं, तो श्री कृष्ण गोवर्धन धारण करके कुछ परिश्रम का अनुभव करते हैं तो अपने प्रेम दृष्टिपात से श्री राधा रानी उनका परिश्रम दूर कर देते हैं, इसलिए इनको गिरित्रा कहते गिरित्रा। पर्वत धारण करते समय श्री कृष्ण की रक्षा करते हैं, श्रम दूर करते हैं प्रेम कटाक्ष आदि से, वही है रमा श्री प्रिया जी श्री राधा रानी। तो ऐसी सेवा जैसे राधा रानी श्री कृष्ण पर देखती हैं प्रेम से, यहां कहां संभव है, ये तो ब्रज में ही संभव है। अयम भाव धीगिमाम सभाम, इस सभा को धिक्कार है, जस्याम अयम पराभूयते, जहां पर यह पुरुष पराजित हो रहा है, अभिभूत किया जा रहा है, पराभूत किया जा रहा है, तास्तु ब्रज भूव धन्या, वे ब्रज भूमिया ही धन्य है, जद जासु अयम श्रीकृष्ण विविध क्रीड़या अमचति गच्छति इति भाव। श्रीधर स्वामी जी का अर्थ किए धन्य है ब्रजभूमि जहां यह पुरुष क्रीड़ा करता रहता है। विविधया स्व मनोरथया क्रीड़या, विविध क्रीड़ा करते हैं, विक्रीड़या विविध क्रीड़या और अपनी इच्छा से अंचति भ्रमति तेना धिगिमं मथुरापुरी जतो अस्याम एतादृशी दुखातिशयस एतादृशो दुखातिशय तम चतुर्थ्या जना पश्यन्ति। पर धिकार है इस मथुरापुरी को जहां के जन्मे हुए लोग, जहां के वासी इस तरह से पराभूत होते हुए दुख सहते हुए इस पुरुष को देख रहे हैं, और ब्रजवासी तो तास्तु वन भूमियो अपि धन्य, ब्रजभूमिया अपि धन्य है एव जासु जिन ब्रजभूमियों में अस्य वेणु वादनादि विविध क्रीड़ा क्रीड़ानंद क्रीड़न आनंद, जहां यह पुरुष बांसुरी बजाता रहता है विविध क्रीड़ा करता है, तम च तत्रत्या सानंदम पश्यन्ति इति दौतितम। तो ब्रज के लोग श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए और विविध क्रीड़ा करते हुए देखते हैं, और यहां के लोग इस पुरुष को पराभूत होते हुए देख रहे हैं, पसीना छूट रहा है और यह लड़का हाँफ रहा है और यहां के लोग तमाशा देख रहे हैं, तो निश्चित है मथुरा मंद भाग्यपुरी है। अंचति इति वर्तमान प्रयोग तासाम तत्रैव पुनः कृष्ण गमनाभिप्रायात् वस्तुतः तु यथार्था एव, ये कह रहे हैं कि यह पुरुष घूमता रहता है ब्रजभूमियों में, गोवर्धन में, नंदगांव में और अनेक वनों में, जमुना के तट पर द्वादश वन है, इन वनों में यह अंचति भ्रमति अपनी इच्छा के अनुसार घूमता रहता है। यह वास्तव में सत्य बात, अंचति खेलता रहता है, घूमता रहता है। तो यह भारतीय प्रयोग है। वास्तव में सरस्वती जी श्री मथुरा नगरियों के मुख से बोल रही हैं। जो सत्य है उस सत्य का उद्घाटन हो रहा है। यह श्री कृष्ण की नित्य लीला है। श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर के कभी नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम् न गच्छति, एक पैर भी बाहर नहीं जाते हैं वृंदावन छोड़कर। तो मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं कि यह पुरुष वही वृंदावन की भूमियों में ही खेलता रहता है। कभी वृंदावन में जमुना के किनारे, कभी गोवर्धन की घाटियों में, कभी नंदगांव में, कभी विविध वनों में, कभी काम वन में, महावन में, इस तरह से यह घूमता रहता है। तो श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि भारती सरस्वती उनके मुख से बोल रही है, नित्य लीला का प्रकाशन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का यह विहार ब्रज में नित्य है, ये कभी नहीं बंद होगा। अनंत अनंत काल तक ही रहेगा और अनादि काल से है। इसको नित्य कहते हैं, नित्य लीला है यह। तो वर्तमान क्रिया के प्रयोग से इस रहस्य का, इस सत्य का उद्घाटन हो रहा है। कृष्ण यहीं खेलते हैं, ब्रज में ही खेलते हैं, इष्ट में खेल रहे हैं, यह भी अर्थ है। तो इनका ईश्वर जमाल जो मथुरा में हैं, तो वृंदावन में है ही, और मथुरा में इस तरह पराभूत होते हैं, इन्हें परेशान किया जा रहा है, और वृंदावन में आनंद से रहते हैं। पुण्य भी सुख फलम भवती निरंतरम तत्रत्यानाम सुखानुभवा, सुख का अनुभव कर रहे हैं ब्रजवासी और श्री कृष्ण। तो इस तरह पुण्य का सुख भी होता है, ये सुख फला है, सुख देने वाली ब्रज भूमियां हैं। उससे विपरीत की निंदा कर रहे हैं। अच्छा, अब भूमि की प्रशंसा करके उस भूमि में रहने वालों की, और उसमें भी विशेष करके गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। गोप्यस्तप किमचरन जदमुष्य रूपम लावण्य सारम समर्धमनन्य सिद्धम दृग्भी पिबंतनु सवाभिनवम दुरापम एकांत धाम जस सह श्रिय ऐश्वरस्य एवं भूमि अभिनंद्य। गोपिका भी नंद नंदन आहु गोप्य इति त्रिभि। अब तीन श्लोकों में श्री गोपियों के भाग्य की बड़ाई कर रही मथुरा के स्त्रियां। भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में विलाप करते समय कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण के रूप का और गोपियों के भाग्य का वर्णन मथुरा नागरियों ने किया है। यह श्लोक चैतन्य चरितामृत में आया है, इसकी व्याख्या भगवान स्वयं अपने मुख से किए हैं। हंत हंत महासुकृतन एव ब्रजभूमिषु उत्पद्यन्ते तेसु अपि गोपी जनाः अति श्रेष्ठा इत्याह सरार्थ दर्शनी। जो महासुकृति होते हैं, जिन्होंने महापुण्य किया है, वही ब्रजभूमि में उत्पन्न होते हैं, ब्रज में जन्म लेते हैं, और उसमें भी श्री गोपी जन तो अति श्रेष्ठ हैं। वे कहती हैं गोप्यः किम तपः अचरन, गोपियां क्या सुकृत की थी, कौन तपस्या की थी, की हैं, कैसा अद्भुत भाग्य है। तो उस तपस्या का क्या लक्षण है कि बहुत सुकृत किया, महासुकृत किया, महापुण्य किया, तप किया, जिस तप के प्रभाव से ताहा दृग भी अपने नेत्रों से अमूष्य रूपम पिबंती, श्री कृष्ण के रूप को हमेशा पीती रहती है, पीती रहती है, देखती है नहीं कह रही है, पिबंती पीती रहती है, अस्य रूपम पिबंती। तो कृष्ण के रूप का जो पान है यही बता रहा है कि यह महासुकृत का फल है, बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा दान और क्या क्या किया है उसका एक फल है। समस्त तीर्थों में कोई कई बार स्नान किया हो, कई बार वेदों को पढ़ा हो और ब्राह्मणों को दान दिया हो, दीनहीन को सुखी किया हो, दान दिया हो, इस सुकृत का एक फल है। वास्तव में यह किसी सुकृत के द्वारा लब्ध नहीं है श्री कृष्ण का रूप, लेकिन लोकोक्ति है, लोक में यही रीति है। जब किसी को कोई बड़ा चीज मिलता है तो कहता है बड़ा तप किया होगा, बड़ा पुण्य किया होगा। तो श्री मथुरा नागरी जन ये कह रहे कि गोपियों ने क्या पुण्य किया था, जत रजस्मा जेन तप आचरणेन ताह दृग्भि नयने अमुष्य रूपम पिबंती, श्री कृष्ण के रूप को पीती रहती। उस रूप की विशेषता बता रहे कई कई शब्दों में, वह है लावण्य सारम, जो लावण्य का सार है श्री कृष्ण का रूप। लवणस्यापि यह सार तत्स्वरूपम किंवा लावण्येन अंग प्रत्यंग लावण्येन सह सारम श्रेष्ठम। यदि मूर्तिमान लावण्य हो, ऐसे लवण से लावण लावण्य बना है श्री कृष्ण का जो रूप है, तो वह लावण्य का सार है, स्वाद का भी सार है। अगर मूर्तिमान टेस्ट सामने आ जाए, मूर्तिमान सुख है और मूर्तिमान सुंदरता, उसका भी सार है श्री कृष्ण का रूप, उसका भी सार है, लवण्य का सार है। लवण से लवण बनता है, मधुर मधुरता का भी सार है यह। ऐसे लोक में तो लवण माने लोग नून समझते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक लवण न हो साग सब्जी में तो सब लवण बिना बहुव्यंजन जैसे फीका लगता है ना, तो उसमें थोड़ा सा लवण मिला देने से टेस्ट आ जाता है। इसीलिए मधुर शब्द मधुरता के लिए लवण लवण शब्द का प्रयोग किया जाता है, मधुरता। और हमें सुना है गुजरात के लोग लवण को मीठा कहते हैं, मीठू कहते हैं, वो नमक नहीं कहते हैं, मीठू कहते हैं, तो वही अर्थ है, मतलब मीठा स्वादिष्ट। मीठा का अर्थ केवल यह मीठा नहीं है जिसको डायबिटीज में मना किया जाता है, ये मीठा नहीं, वो चाहे नमकीन हो चाहे कोई हो, कोई अच्छा स्वाद मिलता है तो लोग कहते हैं कि मीठा है, मीठा फल है। से और किसी भोजन को किसी रस को कहते बड़ा अच्छा है, बड़ा मीठा है, तो इसको कहते हैं लावण्य। जितनी भी सुंदरता हो सकती है मूर्तिमान सुंदरता, उसका भी सार है श्री कृष्ण का रूप, लावण्य सारम। और असम अऊर्ध्वम, असमूर्ध्वम, श्री कृष्ण का रूप ऐसा है जो न विद्यते समम ऊर्ध्वम अधिकम च जस्य तप, उस रूप के समान किसी का रूप नहीं है तीनों लोकों में, देवताओं में, दैत्यों में, मनुष्यों में, कहीं भी वैसा रूप नहीं। न तत् समस्याभ्यधिकम कुतोन्य, तो न कोई सम है, जब सम ही नहीं है तो ऊर्ध्व क्या होगा, ऊर्ध्व होने के लिए तो पहले सम होगा तब न ऊपर जाएगा, जब सम ही नहीं है तो फिर ऊर्ध्व कैसे होगा। श्री कृष्ण के उस रूप से, उस सुंदरता से बढ़ करके न किसी की सुंदरता है न समान है। असम ऊर्ध्वम, ये अ दोनों में लगेगा, सम में और ऊर्ध्व में, असम अनूर्ध्वम, श्रीकृष्ण का रूप है केवल श्रीकृष्ण में है, श्रीकृष्ण का में क्या है और श्रीकृष्ण ही रूपवान है, देह देही का भेद नहीं है, वो है उनका स्वरूप है। श्रीकृष्ण के समान कोई सुंदर नहीं है, हमने बढ़ करके होने की बात तो सोचना ही बेकार, बराबर किसी को नहीं कह सकते, समान नहीं। एक से एक सुंदर है देवताओं में लोग, लेकिन कामदेव को सुंदर माना जाता है। तो कामदेव आया था वृंदावन में श्रीकृष्ण को पराजित करने के लिए, श्रीकृष्ण को पराजित करना चाहता था कि श्रीकृष्ण में काम वासना पैदा कर दे किसी स्त्री के प्रति, क्योंकि वो भगवान शिव में भी काम वासना पैदा कर चुका था, इसलिए उसका दर्द बहुत बढ़ गया था। मोहिनी को देख करके भगवान शिव लट्टू हो गए थे, तो कामदेव बड़ा गुमान में था। यद्यपि उसका प्रभाव नहीं था, लेकिन वो मानता था कि शिव जी को तो मैं ले ही बीता और ब्रह्मा को उसके पुत्री के पीछे हरिणी बनाकर दौड़ा दिया, तो ब्रह्मा को भी मैं पस्त किया, अपने पुष्प बाण से शिव जी को बाधित किया, इंद्र भी हमारे बाण से मुनि पत्नी के साथ गमन किए, अहिल्या के साथ, किसी को नहीं छोड़ा, तो ये बचे हुए हैं। तो बड़े गुमान से आया, नंददास जी ने लिखा है बड़े गर्व के साथ वो आया वृंदावन। अभी वो धनुष पर बाण चढ़ा करके, अपने उसके पंच बाण हैं, बाणों का अद्भुत वर्णन है, तो पंच बाण चढ़ा करके और श्रीकृष्ण पर निशाना लगाया कि मतलब ये किसी गोपी पर आसक्त हो जाए। और किस पर निशाना लगाया, जो भगवान सहस्रों गोपियों के बीच में रास मंडल के लिए तैयार थे, तो उनमें काम विकार तो कभी है ही नहीं, तो मूर्तिमान चिदघन बापू हैं, तो प्रेम की लीला कर रहे हैं। जिन ही उसने मदन मोहन को देखा, श्रीकृष्ण को देखा, देखा तो देखते ही हाथ से धनुष गिर गया, बाण गिर गया, मूर्छित हो गया, वहीं बेहोश हो गया। देख करके सुंदरता, भगवान की सुंदरता देख करके बिल्कुल चकित हो गया। नंददास जी लिखते हैं, रति पास में थे उसकी स्त्री, वो संभाल ली अपने पति को लेकर के, और लोगों से कहे करे भागो भागो भागो, पानी का छींटा देने लगी, दांत लग गए कामदेव को, तो नाम धरे मदन मोहन। तो श्रीकृष्ण मदन को भी मोहित करने वाली, क्या कृष्ण को मोहित करेगा, देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा है। इसीलिए उनका नाम मदन मोहन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसी कारण से नाम धरे मदन मोहन, चढ़ी गोपीर मनोरथे मनमथे र मनमथे, नाम धरे मदन मोहन। मदन मोहन का अर्थ यह है कि जो कामदेव को भी मोहित करते हैं और स्वयं कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम, स्वयं करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है, वो तो एक करोड़ संख्या बनी जा रही है कि अनलिमिटेड कामदेव की शोभा को बढ़ाई जाए कोटि कोटि गुना, फिर भी श्री कृष्ण सबसे आगे है परम सुंदर। इसको यहां पर व्यक्त किया जा रहा है असमोर्ध्वम, असम अवर्ध्वम, अनन्य सिद्धम। अच्छा, वो भगवान श्रीकृष्ण की जो सुंदरता है ब्रज में, वह अन्य साधनों से साधित नहीं होती है। इस संसार में जैसे देखा जाता है कि किसी में कोई सुंदरता है तो उसको साधित करने के लिए अन्य साधन है, जैसे पहला साधन है कपड़ा पहन लेना। कपड़ा एक सौंदर्य का साधन है, नहीं नंग धड़ंग क्या अच्छा लगेगा आदमी, कपड़ा पहला साधन है। इसके बाद आभूषण है, कुछ आभूषण लगाते हैं लोग और आभूषण उस पर भी क्या क्या सेंट पेंट लिपस्टिक और क्या है तब थोड़ा अच्छा लगते, नहीं तो वो साधन न रहे बाहरी तो भूत ही है। इससे सौंदर्य को साधित करते, लेकिन श्रीकृष्ण का सौंदर्य ऐसा है न अन्य साधित अनन्य सिद्धम न अन्य न आभरण आदि न सिद्धम, गहना आदि के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है। और ऐसा सौंदर्य नहीं है कि कुछ खाएंगे तब जाकर के हेल्थ वो बनेगा। कुछ लोग तो कितना भी खाते हैं लेकिन देह दिन पर दिन सूखता ही जाता है। ये तो बात छोड़िए, तो मनुष्यों की बात है, लेकिन देवता लोग बड़े सुंदर होते हैं, बहुत काल तक उनका शरीर चलता है, लेकिन वे भी उनकी जो सुंदरता है स्वतः सिद्ध नहीं है, कई उपकरणों के द्वारा तब वो साधित होती है। लेकिन भगवान कृष्ण का सौंदर्य न अन्य न आभरण आदि न सिद्धम किंतु स्वतः एव स्वाभाविक इत्यर्थ न अन्यस्मिन कस्मिंश्चित पुरुषे काले वा पुरुषे काले वा सिद्ध, अतएव उक्तम श्रीमद उद्धवेन विस्मापनम स्वसच सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणानि। इसलिए श्री उद्धव जी ने कहा है भगवान श्री कृष्ण के विषय में विदुर जी से कि श्री कृष्ण का वह रूप इतना सुंदर है कि उस पर यदि कोई गहना आभूषण डाला जाता है तो उससे आभूषण की शोभा बढ़ती है न कि कृष्ण की। भूषण भूषण अंगम, भूषण को भी भूषित करने वाले उनके अंग हैं। तो अन्य उपकरणों से अन्य सजावट से अन्य प्रकार से उनकी शोभा नहीं है, अपने आप स्वतः उनकी शोभा है। कुछ भी न हो कृष्ण के पास, केवल स्वाभाविक जो उनका केश पास है और मुखमंडल है, श्री भुजा है, पैर है, तो अपने आप में परम सुंदर है। इसको कहते हैं न अन्य सिद्धम, अथवा अन्येषु अन्य किसी में ऐसा रूप नहीं है, देवता में, गंधर्व में, यक्ष में, सिद्धों में, किसी में भी नहीं। मनुष्य में तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं, मनुष्यों को देवता लोग देखते हैं कभी कभी विमान से, तो विशेष कलयुग में भागवत में लिखा गया है, तो वो देखते हैं कि ये सब पिशाच की तरह लग रहे हैं। देवता लोग आपस में बात करते हैं, मनुष्य पिशाच की तरह लगते हैं। और कलयुग में तो कोई सुंदरता नहीं रहेगी, लावण्यम केश धारणम, बस लंबा लंबा केस रखना, इसी को भारी सुंदरता आदमी समझेगा। भले आंख गाल सब धसी हो, बस लंबा बाल है तो इस पर वो सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। भागवत में लिखा है कलयुग वर्णन में, ये है लावण्यम केश धारणम, दूरे बार आयनम तीर्थम। और कलयुग में तीर्थ क्या होगा, अगर अपने घर से बहुत दूर कोई जलाशय है, दूर है ज्यादा, तब तो वो तीर्थ है, और नहीं गंगा जी भी है निकट बह रही है तो वो तीर्थ नहीं है। कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग होंगे, ये सुखदेव गोस्वामी बोले। वैसे समान रूप से भी चाहे सतयुग का मनुष्य हो चाहे त्रेता का द्वापर का, सभी पिशाच जैसे लगते हैं धरती पर देवताओं की दृष्टि में। वे लोग मनुष्यों के अपेक्षा बहुत सुंदर है। तो मेरे कहने का आशय है कि जब देवताओं में, सिद्धों में, गंधर्वों में भी वैसा सौंदर्य कहीं नहीं है, किसी में नहीं है, तो फिर मनुष्य में होने का तो प्रश्न ही क्या है। फिर भी भगवान का जो आकार है वो मनुष्य का है, मनुष्य का आकार है, नर बकुतहर स्वरूप। नर बपु तहारा स्वरूप, तो वो है अनन्य सिद्धम। और जससः श्रियः ऐश्वरस्य एकांत धाम, यश का, श्री का, महालक्ष्मी का और ऐश्वर्य का अव्यभिचारी स्थान है भगवान का धाम शरीर। एकांत धाम का अर्थ है वह जस का आश्रय है, लक्ष्मी का आश्रय है, ऐश्वर्य का आश्रय है, सबका मूल है। अनुसवा भिन्नमन, और श्री कृष्ण का रूप है प्रत्येक संध्या में अनुसव, प्रत्येक क्षण नया नया होता रहता है, नया नया अभिनव होता रहता है। अनुसव ऐसे तीन सव होते हैं, प्रातः, दोपहर, शाम, लेकिन अनुसवम का है अर्थ प्रतीक्षण। अभी कोई श्री कृष्ण को देखे आधा घंटे के बाद, एक मिनट के बाद भी, तो उसे लगेगा कि मैं इसको पहले नहीं देखा था, इतना सुंदर पर सुंदर होता जा रहा, सौंदर्य की अभिवृद्धि ही होती है। और वो कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरा नहीं होगा, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो कोई अब मन में ये कल्पना मत कीजिए कि कभी तो एक सीमा पर आएगा, नहीं नहीं, अभी अभी अनुसमम अभिनवम, अनुसव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता अभिनव होता जा रहा है। इसीलिए गोपियों को इतनी छटपटाहट होती है, वो तो सोचते हैं कि हमने देखा ही नहीं श्री कृष्ण को। देखने के बाद जो देखने की लालसा होती है, तो उससे पता चलता है कि इस रूप जो है अभिनव, प्रतिक्षण अभिनव होता जा रहा है, अपरिचित सा लगता है। प्रतिदिन क्या, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकेंड वह नया नया होता जाता है। और इस संसार में ऐसा रूप कहां है, कहां कोई प्रतिक्षण नया हो रहा है। अगर लगातार साथ में कोई रहे तो कुछ दिन के बाद अब देखने की भी इच्छा नहीं करती। आदमी अपने प्यारी पत्नी से भी कहता है, ठीक है दूर बैठो थोड़ा, हमको एकांत में आराम करेंगे, है ना, देखने की कोई लालसा नहीं रहती। लेकिन श्री कृष्ण आए इतने सुंदर हैं कि उनको देखने की होड़ रहती है, और देखने वाला जन्म अवधि हम रूप निहारल नयनन तिरपित भेल। राधा रानी कहती है कि जब से जन्म हुआ है तब से मैं देख रही हूं कृष्ण का रूप, लेकिन नयनन तिरपित भेल। विद्यापति ठाकुर जी को लिखे कि नयन तृप्त नहीं हुए, कभी नहीं तृप्त हुए। प्रतिक्षण नित्य नूतन होता रहता है, नवीन होता रहता है, तो कहां से तृप्ति हो। कभी इसका मतलब है कभी फीका नहीं होता है, नित्य फ्रेश रहता है, रूप सुधा सिंधु में उच्छलन होता रहता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। गोपियों का भाव और श्री कृष्ण का रस दोनों में होड़ लगती है। जैसे जैसे भाव बढ़ता है वैसे वैसे श्री कृष्ण की छवि बढ़ती है, और महाभाव में श्री राधा के सामने तो ऐसा सुंदर सौंदर्य प्रकट होता है कि राधा रानी की दशा को देख करके श्री कृष्ण को स्वयं ईर्ष्या होती है कि मैं अपना रूप देखूंगा, मैं इतना सुंदर हूं। ईर्ष्या होती है राधा रानी से, तो राधा रानी के भाव को और शरीर के कांति को वे स्वीकार की चोरी किए, चोरी की मतलब ऐसा बने और अपने आप को देखने के लिए, अपने आप अपनी भक्ति करने के लिए, तो श्री कृष्ण नदिया में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ली, स्वयं श्री कृष्ण। ऐसा जादू अन्य को तो छोड़ दे, विस्मापन स्वच्च विस्मापनम च, अपने को भी श्री कृष्ण का रूप विस्मित करता है। अपने को इसका तात्पर्य करते हुए ग्रंथकार कहते हैं चैतन्य चरितामृत की रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अपने को मतलब अपने स्वरूप नारायण को भी, नारायण की छोड़ दीजिए, स्वयं श्री कृष्ण को वो रूप मोहित करता है। दर्पण आदि में, जल में, जब श्री कृष्ण अपने को देखते हैं, तो इतनी इच्छा होती है कि मैं अपने को देखूं, अपने को देखता रहूं, लेकिन अब दर्पण कब तक लिए रहेंगे, मिरर में कब तक देखेंगे। अच्छा, मिरर में देखेंगे भी तो अपने से अपने को आलिंगन नहीं कर सकते, चूम नहीं सकते, आस्वादित मने कर आस्वादन की इच्छा होती है, लेकिन मने उठे क्षोभ, आस्वादित पारी नारे मने उठे उसे क्षोभ, क्षोभ उठता है। बहुत काल तक वे विचार करते रहे कि मैं अपना आस्वादन करूंगा, मुझे मेरी माधुरी में कौन ऐसा बल है जो राधा रानी को इतना उन्मत्त रखता है, तो अपना आस्वादन करना चाहते थे, राधा रानी के भाव के महत्व को, उसकी शक्ति को देखना चाहते थे, इसीलिए उस भाव को स्वीकार किए अपना स्वरूप का आस्वादन करने के लिए। ये है श्री कृष्ण का अद्भुत सौंदर्य, अनुसवाभिनवम प्रतिक्षणे नूतनम दुरापम। और वह दुर्लभ है जिन्होंने पूर्ण नहीं किया है, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं किया है, उनको कभी ये रूप सुलभ नहीं होगा। सबसे बड़ा पूर्ण है भगवान कृष्ण की भक्ति, पुण्य श्रवण कीर्तन। तो दुरापम अकृत पुण्या नाम चक्षुषो अपि प्राप्तुम अशक्य। श्रीकृष्ण का रूप ऐसा है, श्रीकृष्ण ऐसे हैं कि और डायरेक्ट प्राप्त होने की बात तो छोड़ दीजिए, चाक्षुष सम्मिलन भी नहीं हो पाएगा। अकृत पुण्या नाम, नेत्र से दर्शन भी नहीं हो पाएगा जिन्हें पूर्ण नहीं किया है। तो ऐसे रूप को, ऐसे लावण्य सार असमोर्ध अनन्य सिद्ध जस श्री ऐश्वर्य के एकांत धाम और अनुसव अभिनव स्वरूप को, जो दुराप है, दुर्लभ है, उस रूप को श्री गोपियां अनुक्षणम पिबंती, पीती रहती है, सौंदर्य मृतम पिबंती अर्थात परम प्रीत्या पश्यंती इति अर्थ। आखिर पीने का अर्थ है केवल यही, इसी क्रिया से लगाया जाए तो क्या उसका अर्थ होगा, पिबंती पीती रहती है, और वो भी चक्षु भी नेत्र है पिबंती, तो नेत्र से कोई चीज पिया थोड़ा जाता है, पिया जाता है जिह्वा से, है ना, मुख से पिया जाता है। लेकिन मथुरा की स्त्रियां कह रही कि अपने नेत्रों से निरंतर पीती रहती, इसका अर्थ है परम प्रीत्या पश्यंती, दर्शन में अत्यंत सुख मिलता है, अत्यंत प्रसन्नता मिलती है, और उसी प्रसन्नता के आवेश में वे हमेशा पीती रहती। हंत हंत महासुकृतन एव ब्रजभूमिषु उत्पद्यन्ते तेषु अपि गोपी जना अतिश्रेष्ठा इत्याह गोप्या इति किम अचरत भो सख्या तप तपह यदि जुयम सर्वज्ञस्य कश्चित मुखात जानी था तदा ब्रूत। अर्थात ये कह रही हैं कि हे सखियां, पता लगाओ कि ब्रजवासिनी ब्रज गोपियां क्या सुकृत की थी, यदि हमको पता लग जाए उनके सुकृत का, उनके पुण्य का, तो हम भी वो पुण्य करेंगे जिससे कि श्री कृष्ण का रूपामृत हमें भी नित्य पीने को मिले। तो पता लगाओ किसी सर्वज्ञ के द्वारा, किसी ज्योतिषी के द्वारा, ये गोपियां पूर्व जन्म में क्या तप की थी, उत्कंठा हो रही है। जानी था तदा ब्रूत जथा तद एव अस्मिन् जन्मनि कृत्वा ब्रजभूमौ गोप्यः भवेम। हम पुण्य करके और इसी जन्म में ब्रजभूमि में गोपियां हो जाएंगी, और श्रीकृष्ण के रूपामृत को पी करके परम सुखी रहेंगे। वयं तु गोपियां तो रूपामृत पीती हैं, वयं तु मथुरास्था, हम तो मथुरा में रहने वाली हैं, अस्य पराभव विषम पीत्वा आनख सिख ज्वालाम इति भाव। तो श्री गोपीजन इनके रूपामृत को पीती हैं और हम तो इनके पराभव रूपी विष को पी रही हैं। श्री कृष्ण की इस दुर्दशा को देख रही हैं, ये हमारे लिए विष है और इस विष को पी करके कृष्ण के पराभव को देख करके हम नख से सिख तक जल रही हैं। तासन दृग्भि पानस्यैव तादृश तपः फलत्व मुक्त्वा स्वांगै रालिंगन आदे स्वनिर्वाच्य हेतुकत्वं ज्ञापितः। और उसको के किंचस्य रूपं लावण्यम् अधिकं वर्तत इति अतः उपादीयते इति न च वाच्यम् किन्तु लावण्य सारम् लावण्यस्य अपि यः सारः तत्स्वरूपमेव एतत् ननु स्वर्लोकादिभ्योऽपि न्यूने भूर्लोके अस्मिन् चैदेवं रूपं एवं रूपं दृश्यते तर्हि सर्वतः श्रेष्ठं महावैकुंठ लोके इति इतो अधिकं मधुरं श्री नारायणस्य रूपं भवेदिति तत्राह। कोई कोई मथुरा नागरी ये कह रही हैं कि ये तो मनुष्य लोक में श्री कृष्ण हैं, वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं और उनके परिकर रहते हैं, तो वहां पर भी तो सौंदर्य है ही, ऐसा सौंदर्य वहां भी मिल सकता है क्या? तब कहते नहीं, असमर्धम एतद् रूपस्य सममेव रूपम क्वापि नास्ति किमुत अधिकम इति भाव। इस रूप के समान ही कहीं नहीं है, न वैकुंठ में न स्वर्ग में कहीं नहीं, तो फिर अधिक कहां से होगा। ननु तरहि कृष्णेन एव एतद् रूपम कुतः सकाशात् प्राप्तम, श्री कृष्ण का यह रूप कहां से प्राप्त हुआ है, कहां से सिद्ध हुआ है? तत्राहु अनन्य सिद्धम अस्मिन् एतत् स्वाभाविकम इत्यर्थ, श्री कृष्ण का यह सौंदर्य स्वाभाविक है, किसी से प्राप्त हुआ नहीं है, किसी साधन से नहीं मिला है। ननु एवं अपि एतद् रूपम ता सदा एक रूपत्वेन ते तदापि तासाम न सकृत चमत्कार स्यात्। यदि यह रूप हमेशा एक समान रहेगा तब भी आस्वादन में चमत्कार नहीं हो सकता है, तो उसी को कहती है अनुसवाभिन्नवम प्रतिक्षणे नूतनम एवं चेत तरहि तत्रैव गत्वा अन्य देशिया भी रपि स्त्री भी सुखेन अयम दृश्यताम इति अत आह। तो इस पर मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं कि जब ब्रजभूमि में ही ये रूप मिल सकता है तो वहां चलें, भले हम अन्य देश में जन्म ली हैं, मथुरा में जन्म ली हैं, फिर भी हम वहां जा करके कृष्ण का रूप देखेंगे। तब वे कहते हैं दुरापम, ब्रजवासिनी गोपियों के अलावा ये रूप कोई दूसरी स्त्री नहीं पी सकती है, दुरापम लक्ष्म्या अपि दुर्लभम, लक्ष्मी को भी दुर्लभ है। ननु भवतु नाम अस्य सौंदर्योपाधिकम अधिक सर्वकर्षः श्री नारायण आदौ तु भग शब्द वाच्य सदैश्वर्यमधिकम वर्तते तत्राहु। ठीक है, श्रीकृष्ण में रूप है लेकिन क्या ये औपाधिक रूप नहीं है? क्योंकि भगवान नारायण में सारा ऐश्वर्य है, श्री है, जस है। तब ये कहते हैं नहीं नहीं, जस श्री और ऐश्वर्य का यह एकांत धाम है। जस आदि उपलक्षिता नाम सद्गुणाना में शरणा में व भगा नाम एकांत धाम, भगवत्ता का यह सार है, समस्त ऐश्वर्य माधुर्य श्री कृष्ण में है और ऐसे रूप को श्री गोपी जन निरंतर पीती रहती हैं, अतः वे धन्य हैं। और धन्यता का कारण बताती हैं, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेङ्खेङ्खनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरत्पधियो श्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय गुरु क्रमचित्तया नः। एवं दर्शनवत् अदर्शने अपि तद्रूपं तथैव तासां स्फुरति इति आहुर या इति। वैष्णव नंदिनी में श्री बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि श्री गोपी जन नेत्रों से साक्षात देखती हैं, लेकिन जब नहीं देखती हैं वे वन में चले जाते हैं या बीरा होता है, तब भी श्री कृष्ण उनके मन में ऐसे ही स्फुरित होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। अथवा कुछ मथुरा नागरियों ने कहा कि प्रति कृष्ण के रूप को नित्य पीती रहती हैं, तो नित्य कैसे पीती हैं? वन में चले जाते हैं या रात्रि के समय सो जाते हैं तो उस समय कहां पी पाती है? तो उसी का उत्तर दे रही हैं और नागरियां कि नहीं, चाहे वो कोई काम कर रही हो, कुछ भी, दोहने अवहनने मथन उपलेप प्रेंखेंख नारूत क्षण मार्जना, उस समय भी श्री कृष्ण उनके चित्त में वैसे ही उभरते रहते हैं नित्य, और वे मन में उनके रूप सुधा को पीती रहती हैं और आवेश में आनंद में गाती रहती है। किंच तासाम गृह कर्माणि अपि नैतद माधुर्य पानम पान प्रतिबंधकानि इत्यादि। काम धंधा करने में भी श्री कृष्ण के सौंदर्य पान में कोई प्रतिबंध नहीं हो पाता है। यहां पर यह श्लोक जो है ये सबके लिए शिक्षा दे रहा है, उत्साह दे सकता है। कोई भी काम करते समय श्री कृष्ण का चिंतन हो सकता है और गान हो सकता है, या ब्रज स्त्रीय, जो ब्रज स्त्रियां दोहने दोहन में अवहनन में गाय दुहते समय, धान आदि कूटते समय और मथते समय, दधि आदि मथते समय, उपलेप घर लिपते समय या अपने देह में उपटन आदि लगाते समय, प्रेंखेंखन और झूला पर झूलते समय, और अर्भ रुदितम और बच्चे जब रोते हैं तो उनको मनाते समय, उनको उनके पलना पर झूला पर झुलाते समय आदौ, और भी गृह सम्मार्जन आदि करते समय, सब समय एनम श्री कृष्णम गायन्ति च ता उरुक्रम चित्त यानः, उरुक्रम चित्तमेव यानम गमन साधनम जस्यः ताम अनुरक्त धियः अश्रुकण्ठ्यः ब्रजस्त्रियः धन्यः। धन्य है स्त्रियां, सब समय श्री कृष्ण का गीत गाती रहती, या दोहने दोहन में गाय आदि दुहते समय, या दोहन में दुहवाते समय जब गौएं दुही जाती हैं तो उस समय भी प्रियतम श्याम सुंदर के विषय में गाया करती हैं, उनके चित्त में वो स्फुरित रहते हैं। क्रिया तो होती है, हाथ का अभ्यास रहता है, शरीर का क्रिया करते हैं, लेकिन मन कृष्ण के लीला में और वाणी का भी आवेश रहता है गाने में। वो कार्य करती हैं, लेकिन ये नहीं कि धरो धरो पकड़ो बछड़ा दूध न पी जाए, ये न पी जाए, ये ले जाओ बाल्टी भर गई अब दूध रखो, कुछ बोलते नहीं, बोलती नहीं, केवल कृष्ण का गीत गाती है। चाहे गाय दुहवा रही हो तब भी कृष्ण के वनगमन का दृश्य, वन से आने का दृश्य और गोवर्धन धारण का दृश्य या पूतना वध की लीला, यही सब गाती रहती, बांसुरी बजाने का गीत, इन सब लीलाओं को गाती रहती। दोहने गवादी नाम दोहन समय सायं प्रभाते वा तो गौएं तो शाम को दुही जाती हैं या सवेरे दुही जाती हैं, दो टाइम दुही जाती हैं। तो गौओं के दोहन के समय, दुहाते समय गायंती, सब जगह ये है एनम गायंती, कृष्ण के विषय में गाती हैं, ये नहीं कह रहे हैं इसी को गाती हैं, एनम श्री कृष्णम गायंती, श्री कृष्ण को गाती हैं। तो उनके गान में जो आनंद है वो श्री कृष्ण के दर्शन में आनंद है। कोई गोपियों के गीत को सुने तो उसको थोड़ा भी ये नहीं लगेगा कि मैं कृष्ण को देख नहीं रहा, एनम गायंती, ये अस्मिन विषय गायंती ऐसा नहीं कह रही, एनम गायंती। दोहन में अवहनन में, अवहनन का अर्थ है उखल आदि में धान कूटना, चावल बनाना, छांटना कोई चीज, उस समय भी गाती ही रहती हैं, कुछ भी कूट रही हैं। उखल आ दो, उखल में या ढेकी में, उखल तो सब लोग देखते ही हैं, आजकल के लोग ढेकी नहीं देखे हैं। ढेकी कुछ बड़ी लकड़ी होती है लंबी, और उसे कूटा जाता है। कुछ कहावतें हमारे यहां कहावत है कि ढेकी स्वर्गों में जयहन तक कूटही के पारी, जो जिसका काम है कहीं जाएगा वो करना पड़ेगा, तो ढेकी स्वर्ग में भी जाएगी तो हम दूसरा काम क्या है, कूटना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो चिवड़ा बनाना पड़ेगा, कोई चीज कूटना पड़ेगा। स्वर्ग में जरूरत नहीं है कूटने पीसने की, लेकिन एक लोकोक्ति है, लोग ऐसे बोला करते हैं। तो श्री गोपीजन चाहे ढेकी चला रही हो, अच्छा है उखल से कुछ कूट रही हैं, या जाता में आटा पीस रही हैं, या चकरी में दाल जर दर रही हैं, चकरी एक अलग कहते हैं, जाता अलग है ना, आटा पीसते समय चकरी उसे छोटी होती है, अरहर को चना को उसमें द्विदल करते हैं, या मसाला पीसते समय आदि, ये समझ लेना चाहिए। कोई चीज कूटते समय पीसते समय भी एनम गायंती, और मथना दही मथते समय, दही से माखन निकालना है तो माखन निकालना ये उद्देश्य नहीं रहता है, शरीर का स्वभाव है वो करता रहता है, लेकिन वो मथते समय भी गाती रहती है। माँ यशोदा किस तरह से गा रही थी, कृष्ण का स्मरण कर रही थी और मथ रही थी, तो ऐसे समस्त गोपियां मथने मथने उपलेप उपलेपने उपलेपन करते हैं। उपलेपन करते हैं अपने शरीर में कोई केसर कस्तूरी आदि लगाना, कोई सी उपलेपन करना, अथवा घर लिपना पोतना, करते समय भी कृष्ण के बारे में गाया करती है। और प्रेंखेंखन, प्रेंखेंखन का अर्थ है दोलन दोलनम, झूला झूलते समय झूला झूलती हैं, तो झूला झूलने का उनका स्वभाव इसलिए तो उस पर झूलती हैं कि झूला पर झूलते समय अवश्य कृष्ण के गीत गाने का अवसर मिलता है, तो झूला पर झूलते समय कृष्ण के बारे में गाती रहती हैं, या बच्चों को झूलाते समय। और रुदित तो, बच्चे जब रोते हैं तो उनको चुप कराने के लिए गोद में लेकर के अथवा झूले पर वो कृष्ण के बारे में गाती रहती है, चुप कराती है और गा गा करके, ऐसा नहीं केवल ओ चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, वो भगवान के बारे में ही गाती हुई बच्चे को लोरी देती। और भरुदी तो उक्षण, उक्षण सेचनम, जब कभी अपने घर के प्रांगण में बगीचे में कोई पानी देती हैं या तुलसी जी को पानी देती हैं या और कहीं छिड़कना होता है घर में इधर उक्षण में छिड़कना, तो उस समय गाती रहती हैं। मार्जनम घर को साफ करती हैं या कोई वस्तुएं साफ करती हैं या शरीर को साफ करती हैं, नहाती हैं, उस समय भी एनम श्री कृष्णम गायंती। चकारात गायंती च, च लिखा चकार च से यह कहा जा रहा है कदाचित पश्यंती कदाचित गायंती चित्यर्थ। कभी गाती हैं कभी देखती हैं डायरेक्ट, जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो उस समय थोड़ा गान शिथिल होता है, देखने में व्यस्त रहती और कभी कभी गान प्रधान हो जाता है गायन की। ताह उरुक्रम चित्तयाना, उनके चित्त पर उरुक्रम रहते हैं, लीला विलासी रासलीला आदि करने वाले श्री कृष्ण के चित्त पर चढ़े रहते हैं, उनका चित्त ही श्री कृष्ण के आने जाने का साधन है, कि चित्त पर हमेशा चढ़े रहते हैं स्फुरित रहते हैं। तो ऐसे ऐसी गोपियां धन्य हैं। तो कैसे जानते हैं इनके चित्त में सदा श्री कृष्ण चढ़े हुए हैं, श्री कृष्ण के चित्त में वे आरूढ़ हैं, तो उसका लक्षण है अनुरक्त धीय, उनका चित्त श्री कृष्ण में लगा रहता है। इसका लक्षण है अश्रुकंठ, उनका गला गदगद रहता है, कृष्ण का गान करके, कृष्ण के रूप लीला नाम आदि का गान करके और कंठ गदगद रहता है, अश्रुकंठ कंठ में आंसू भरा रहता है, वाणी गदगद होती रहती है गाने में। यद्यपि आंखों में भी आंसू होता है लेकिन आंखों के आंसू को वे दबा लेती हैं, क्योंकि सास का भय रहता है, पति का भय रहता है और सबको क्या रो रही है, तो आंसू को, आंख के आंसू को तो रोक लेते हैं लेकिन जो गला में आंसू भर रहता है उसको नहीं रोक पाती, गला गदगद हो जाता है। तो इस तरह से श्री गोपीजन गाती रहती है धन्य है। अब हनन का अर्थ है तुषा हननम, अवलेप का अर्थ है गृहादि लेपनम या कुंकुमादिना स्वांगानुलेपनम वा प्रेंखेंखनम स्वस्य आरोहणे अर्भकस्य वा, स्वयं झूले पर झूलती हैं या बच्चे को झुलाती हैं, मार्जनम रज आदि शोधनम झाड़ू देना आदि शब्दात पचन चित्रणादिनी, चाहे भोजन बनाती हैं घर का, भोजन बनाते समय या चित्र बनाते समय, इस तरह से देह या दैहिक के, देह के लिए या दैहिक कर्म से युक्त रहती हैं, काम करते समय उक्त समुच्चय च, और जितना काम हो सकता है सब के लिए च शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्र च पश्यन्ति इति अर्थ एतानि च कर्माणि तासां प्रायः तद्गानार्थम एव इति, ये सब जब काम करती हैं तो ये गाने के लिए ही करती हैं, और कोई कोई काम होता है जिसमें वो गा नहीं सकती हैं, परिवार का प्रतिबंध रहता है, लेकिन ये सब कार्य ऐसे हैं कि इसमें गाया जा सकता है। प्राय देखा गया है कि स्त्रियां कूटते समय पीसते समय गाने लगती हैं, एक ऐसा अवसर दही महत्ते समय गीत गावे तो उसमें क्या प्रतिबंध है। इस संसार में बहुत प्रतिबंध रहता है विशेष करके स्त्रियों पर, ये काम करो ठीक से करो, इस समय गाओ मत है मत करो, और आधुनिक समय में तो अगर कोई स्त्री ज्योति स्त्री तिलक करे तो लोग तुरंत परिवार वाले ही सबसे पहले कहते हैं क्या ये ड्रामा कर रही है, तिलक की क्या जरूरत है, कृष्ण का भजन ऐसे नहीं हो सकता है। तो तिलक करके करने से बिगड़ेगा क्या, हरे कृष्ण गाने में तिलक अवरोध कर देगा। यदि आज के देखा देखी फैशन का कोई रूप बनाया जाए तो उसको देख करके कोई दिक्कत नहीं है, लोग कहेंगे हाँ ये आजकल का एक फैशन चला है, कुछ भी धारण करो, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो। कोई स्त्री अगर पश्चिम की नकल करे, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह की कपड़ा पहने, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हाँ ये चल रहा है, क्या किया जाए, यही पहनावा सब लोग पहन रहे हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन कोई वैष्णवी बन गई, भगवान का भक्त बन गई, तिलक कर रहे, कंठी बांधी है और साड़ी पहने, तो ये लोग कहेंगे, लोग क्या कर, 16वीं शताब्दी में चली गई पीछे, साड़ी पहनने का समय है। केवल 20वीं और 21वीं शताब्दी का ही रहना चाहिए। इतना पीछे ढकेल देते हैं, मतलब ये रूढ़िवादिता है। तो भोजन में भी अब तो छोटे छोटे लड़के इतना बिगड़ते जा रहे हैं कि वे घर का बना हुआ भोजन पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, जीभ की आदत बिगड़ गई। और हमने सुना है बॉम्बे में एक भक्त बता रहे थे कि संडे को 60% परिवार सब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं संडे को, और स्वयं भोजन बनाने लगे। स्त्री भी चाहते हैं कि आज कौन बर्तन बासन मांजे बनावे, चलो खा करके आए, और उस कहां का सड़ा गला बासी सब्जी बना करके रखा, उसको कौन देखने जाता है, पानी कैसे डाला गया है, कितना गंदा है, ये है वो है, लेकिन कुछ मसाला डाल देते हैं और जिह्वा के लिए अनुकूल पड़ता है, जाकर खाते हैं और हे भी भोजन का दाम दे करके चले, पर फिर भी अब बर्तन नहीं मांजना पड़ा, नहीं बनाना पड़ा, तो सब तो जाते ही हैं, रानी जी भी जाकर के वही खाती है। कम से कम स्त्री को तो रोकना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, घर में मैं बनाऊंगी, हमें कोई आलस नहीं है, भोजन बनाने के लिए ही तो स्त्री का जीवन है, मैं बनाऊंगी कोई बात नहीं, सब घर पर रहे। तो घर पर जो भोजन बनाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाए, तो भगवान का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए भोजन बनाया गया है, स्मरण करते हुए, तो उस भोजन में वो शक्ति कैसे आएगी? अरे उस भोजन में जो शक्ति आएगी, वह शक्ति किसी होटल के भोजन में कैसे आ सकती है? जो कैसे वो भाव आएगा, अंतर हो जाता है। किसी दुकान पर जाया जाए और किसी कपड़े के थान में से कोई थान विवाह के लिए, कोई कपड़ा विवाह के लिए कटवाया जाए कि हमको इतना मीटर कपड़ा चाहिए, और उसी कपड़े में से कोई कफन के लिए ले जाए, दोनों में एक भाव कैसे हो सकता है? इतना अंतर है बाहर के भोजन में। पर आजकल के लोग देखते नहीं, अब सब कह रहे तो हम ही कहे क्या करें, लड़के नहीं मानते हैं, कई कई लोग तो लड़कों का बहाना करके खूब खाते हैं, तो लड़के ठीक है नहीं मानते हैं, तो आपसे जबरदस्ती करते हैं कि आप भी खाइए रेस्टोरेंट में, लेकिन ये बहाना चलता है। पर ये सीखने लायक वर्णन है, खास करके क्रियाओं का जो वर्णन है, या दोहने वहनने मथनो पलेप प्रेंखेंख नार भलुदितो क्षण मार्जना दो गायंति चैन मनोरक्त धियो सुकंठ्यो धन्य ब्रजस्त्रियो उरु क्रमचित्तयाना। धन्य किसको कहा जा रहा है? जो श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं और श्री कृष्ण का गान करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये काम धंधे का काम धंधे की अनिवार्यता सबके पीछे लगी हुई है। ऐसे कभी समय नहीं आता है कि आदमी काम धंधा छोड़ दे, सन्यासी हो जाए। सन्यासी होने पर भी काम धंधा पीछे पड़ा रहता है, बल्कि वो लोग तो और ज्यादा ही काम में लगे हुए हैं। गृहस्थ इतने जुटे हुए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ विरक्त बहुत कम जुटे हुए हैं। विरक्तों को भागवत सुनने की फुर्सत नहीं है, उनका अपना काम है, अपना काम दूसरे तरह का है। तो ये काम धंधा लगा रहेगा, कभी छूटने वाला नहीं है। काम करते हुए ही भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, इसके लिए प्रमाण श्री गोपीजन है। चाहे दोहन में या लेपन में, घर बहरते समय, झूला झूलते समय, भोजन पकाते समय, किसी भी समय में एनम गायंती, कृष्ण का गान कर रही, कृष्ण की लीलाओं को गाती रहती हैं। जो ब्रज में उनकी लीलाएं बीती हुई हैं, होती रहती हैं, उसको गाती रहती हैं। यही हम लोगों का जीवन है, यही करना चाहिए। यदि कृष्ण का स्मरण रहा अपने दुकान में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, विद्यालय में, कहीं भी, और यदि कृष्ण के नाम का उच्चारण हो रहा है, कोई कहीं भी है वो मुक्त है। वास्तव में जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम है और बीच बीच में भगवान का दर्शन है, डीटी है, मंदिर है, तो बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक मार्ग पर हैं, हम असली काम कर रहे हैं। और इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे नाम जप करते हो, ये करते हो, ठीक है, लेकिन पहले मन को बस में करो, मन को बस में करो, ये करो, वो करो, वो करो। तुम बस में करते रहो, हमको कीर्तन करने दो। बस में मन करते करते 60 साल निकल गया, 80 साल तक मन बस में नहीं होगा, है कि नहीं? देखा जा रहा है मन इतना जोर से भागता है कि कितने लोग रोज ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में अगर कोई दिखाने वाली मशीन होती, उनके ध्यान को डिस्प्ले करती कि क्या देख रहे हैं, तब पता लगता कि क्या ध्यान कर रहे हैं। ये सब वास्तव में इस युग में एक पाखंड है। मन को बस में करो, आत्म साक्षात्कार करो, ये करो, सब होगा, लेकिन पहले कृष्ण का तो साक्षात करें, उनको देखें, उनका नाम जप करें, उनको प्रणाम करें, उनका प्रसाद खाएं, अपने आप सब कुछ होगा। यही हमारा धर्म है, यही हमें करना है। इसको अभिधेय कहते हैं, भगवान की भक्ति। इसमें अभिधेय में श्रवण एक प्रमुख, सर्वप्रथम अभिधेय है, सुनना। भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान के भक्तों के विषय में सुनेंगे, गोपीजनों के विषय में, अब भगवान के अन्य भक्त हैं सबके विषय में सुनेंगे, तब तो भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होगा ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम सुनना जीवन का सर्वोच्च काम है, इसे सुनना ही चाहिए अवसर मिलने पर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपने घर के कार्यक्रम को थोड़े काल के लिए छोड़ करके और श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। और बहुत प्रसन्नता होती है कि यहाँ पर वैष्णव आते हैं कथा सुनने के लिए, इतनी भारी संख्या में वैष्णव रहते हैं, वैष्णवी रहती हैं। ये श्लोक पढ़ करके हमारे चित्त में बातें आ रही हैं कि कोई भी क्रिया प्रतिबंधक नहीं है, गान हो सकता है, स्मरण हो सकता है। अपने घर पर रह करके, अपने काम में रह करके, अपने आश्रम में रह करके, जहां भी हो, कृष्ण का कीर्तन गाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। अनेक भक्तों के घर पर ठाकुर जी हैं, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए भोजन बनाना, उनके लिए गीत गाना, आरती करना, यह सब बड़े भाग्य की बात है। यही डायरेक्ट भक्ति। तो इस श्लोक से बहुत प्रेरणा मिलती है कि श्री गोपीजन कोई भी कार्य करते समय गाती रहती थी और स्मरण रखती थी। और एक और विशेष लीला का वर्णन करेगी, गोपियों को किस किस समय श्री कृष्ण के दर्शन का अधिक सौभाग्य मिलता था। प्रातर ब्रजा ब्रजतया विशतश्च सायं गोभिः समं क्वणयतस्य निशम्य वेणु निर्गम्य तूर्णमबलः पथि भूरि पुण्यः पश्यन्ति सस्मित मुखं सदयावलोकम्। ये श्री कृष्ण प्रातः ब्रजात ब्रजत, प्रातः काल ब्रज से वन में जाते हैं गाय चराने के लिए, और सायं आविशतश्च और शाम को लौटते हैं। उस समय उनके, ये षष्ठी विभक्ति में है क्रिया, ब्रजतः आविशतश्च, तो ब्रज से जब वन में जाते हैं तो उस समय तो श्रीकृष्ण के सौंदर्य अमृत को पीने का अवसर कम मिलता है। श्रीकृष्ण जाते हैं, लेकिन शाम के समय जब वे आते हैं तो उस समय अपने घरों से निर्गम्य तुरंत अपने अपने घरों से निकल करके श्री गोपिकाएं आकर के उनके सस्मित मुखम पश्यंती, बड़ी ही तत्परता से, बड़ी ही आसक्ति से श्री कृष्ण के मुख को देखती। भूरि पुण्य, इनका महान पुण्य है। वन से लौटते हैं श्री कृष्ण, उस समय श्री कृष्ण का मुख गौओं के धूल से धूसरित रहता है, गौ के खुर से धूल उड़ी रहती है, उसमें चलते हैं तो धूसरित मुख होता है, यहां तक कि मयूर पंख भी धूसरित रहता है और केस भी धूसरित रहते हैं, धूल पड़ी रहती है, पर फिर भी श्रीकृष्ण बड़े सुंदर लगते हैं। गोचारण करके, गौओं का पालन करके, दिन भर परिश्रम करके लौटते हैं, तो उस समय गोपियां अपने अपने घरों से निकल करके उनको देखती हैं। यहां पश्यंती शब्द का प्रयोग है, पश्यंती सस्मित मुखम सदयावलोकम, मुस्कान से युक्त श्रीकृष्ण के मुख को देखती हैं, और मुख कैसा है, सदयावलोकम, जिसमें दया भरी चितवन है। भगवान श्री कृष्ण जब गोपी जनों पर देखते हैं तो बड़े स्नेह से, दया के साथ, और इस भाव से कि दिन भर मेरे विरह में झुलसी हुई है, दिन भर उनके लिए वास्तव में बहुत कई युगों के समान बीतता है कृष्ण के बिना, इस बात को श्याम सुंदर समझते हैं, इसलिए सब दया अवलोकम, दया दृष्टि से देखते हैं उनकी तरफ, मुस्कुरा करके देखते हैं और स्नेह से भरा हुआ दृष्टिपात करते हैं उनकी तरफ। ऐसा नहीं कि न देखें या देख करके जल्दी हटा लें। उस समय यदि गुरुजन शाम के समय, विशेष करके शाम के समय अगर गुरुजन भी जुटे हों समाज में, तो श्रीकृष्ण इसकी भी चिंता नहीं करते हैं, वो कुछ देर तक गोपियों की तरफ देखते हैं और उनको अपना मुख दिखाते हैं। यही है भगवान की दया, स्नेह है उनका, क्योंकि दिन भर विरह की ज्वाला से दग्ध गोपियों को अगर वे इस तरह से अपना मुख न दिखावे तो वो जी ही नहीं सकती। तो मथुरा की स्त्रियां कहती हैं कि गोपियों का बहुत बड़ा भाग्य है कि शाम और सुबह वन में जाते समय, वन से लौटते समय, ब्रज में आते समय ये श्री कृष्ण के मुख को देखती हैं, और श्री कृष्ण गो संभालन के छल से बहुत देर करते हैं। कभी कभी किसी गोपी को दिखाने के लिए जानबूझ करके किसी गाय के भीतर ऐसी इच्छा पैदा करते हैं, वो गाय सीधा रास्ता न जाकर के इस गली में मुड़ जाए, तो वे जाते हैं, पूछते हैं, कोई गोपी खड़ी है देखने के लिए श्री कृष्ण, तो आपने देखा इधर से मेरी गाय गई, और गोरी गाय है, मतलब धवल गाय है, इधर कोई गाय गई क्या? वो गोपी तो ऊत देखती है कि कोई ससुर नहीं देख ले, या कोई घर का न देख ले, और श्रीकृष्ण के उस मुख सुधामृत को पी करके इतना सुखी होती है, यही इच्छा होती है कि अभी अखबार में भर करके और इनके अधरामृत को पीऊं, इनके मुख को चूमूं, लेकिन बहुत बड़ा प्रतिबंध है, ब्रज में कर नहीं सकती, पर फिर भी श्री कृष्ण गो संभालन के छल से और किसी तरह से गौएं हैरान कर देती हैं हमको, उसे करके दिखाते हैं। और गोपियां खड़ी रहती हैं, उनको बहुत देर तक ऐसे वो दिखाते जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो भगवान की योग माया शक्ति है, तो गौएं भी तो कोई साधारण पशु नहीं है ना, बहुत पूर्ण किए हुए बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जो गाय बने हुए। तो भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए उनमें इच्छा होती है, वो इधर उधर चले जाते हैं, नहीं तो गाय अपने घर को पहचानती है ना, कैसे इधर उधर जाएगी। हम लोग देखते हैं गाय लोग चरा करके लाते हैं तो अपने अपने गली में गौएं चलती जाती हैं चलती जाती हैं, लेकिन ये गौएं कभी भी इधर उधर हो जाती है, बछड़ा भाग जाता है। तो श्रीकृष्ण को एक अवसर मिलता है गाय संभालने का, इधर जाना इधर जाना इधर जाना इधर जाना, अपने परम सुंदर मुख को दिखाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। गाय चरा करके आए हैं लेकिन थके बिल्कुल नहीं है, अगर थके हुए मुख दिखा दे गोपियों को तो उनको तो मर्माहत व्यथा होगी कि दिन भर गाय चरा करके थक गए हैं। इसलिए भगवान थकने की लीला नहीं करते हैं, सस्मितम आनंद से मुस्कुराता हुआ मुख दिखाते हैं दिखाते हैं। और स्वयं भी तो विरह हमसे व्याकुल है, श्री राधा रानी आदि गोपियों के मुख को देख करके ये भी तृप्त हो जाते हैं, तो उनके मुख को देखने की लालसा से ये उधर उधर जाते हैं और उनको दिखाते हैं। तो मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं, धन्य हैं ब्रज की स्त्रियां जो प्रातः और सायं श्याम सुंदर के मुख को देखती रहती हैं विशेष रूप से और सुखी होती हैं। ब्रज स्त्रिय गोभी समम, एक गायों के साथ सखाओं के साथ प्रातः ब्रजात ब्रजतः, प्रातः ब्रज से निकलते हैं, गच्छतः सायं आविशतः, इस तरह से श्री कृष्ण के मुख को देखती हैं। और अच्छा कैसे आ जाते हैं, कैसे जानते हैं कि श्री कृष्ण आ गए या वन में जा रहे हैं, जाते समय भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहते हैं तो वो सूचना देते रहते हैं कि अब चल चल दिए, तो पहले से ही प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन बांसुरी की आवाज सुनते ही सब बाहर। और यह भी प्रतिबंध है कि बांसुरी की आवाज जो कुछ भी वो परिजन लगे ही रहते हैं फिर भी वे निकल आती हैं, तो कोई गवाक से कोई खिड़की से कोई गली में सामने आकर के कोई कुछ कोई कुछ, और आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ करके वे उधर से देखती है कृष्ण इधर से जाते हैं देखती हैं, श्री कृष्ण और आगे बढ़ते हैं तो और दौड़ करके वो किसी तरह से गली से आगे जाती है वहां से देखती है। शाम के समय तो जिसको आवनी लीला कहते हैं वो तो अद्भुत है, और अनेक महान कवियों ने भक्तों ने भगवान की इस लीला का गान किया है, क्योंकि वो सुख का समय होता है। सवेरे सवेरे कृष्ण वृंदावन जाते हैं तो ये गोपियों के दुख का समय होता है, वो बाहर जाते हैं तो लगता है कि उनका कलेजा निकल रहा है, वे सोचती है दिन भर कांटों पर चलेंगे घास पर पत्थर पर चलेंगे उनकी कोमल चरण में बैठा होगी। चलसि जद ब्रजा चारयन पसुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणाकुर सीद तीति न कलिलता मन कांत गच्छ। जब आप चलते हैं प्रातःकाल गौओं को चराने के लिए तो हम ये सोच करके बहुत व्याकुल होती है, हमारे मन व्याकुल होता है कि आप पत्थर पर पैर रखते हैं कुश पर रखते हैं घास पर, गौओं के मुख से और खुर से कटे हुए घास पर आप चरण कमल रखते हैं, आपके चरणों में व्यथा होती होगी, अब क्यों ब्रज में क्यों वन में जाते हैं। नंद बाबा के इतने सेवक हैं वे गौएं चरा करके लाएंगे, आपको जाने की क्या जरूरत है, केवल आप हमको दुख देने के लिए जाते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बहाल लिखे, केवल हमको दुख देने के लिए आप जाते हैं, नहीं तो आपको क्या आवश्यकता है गाय चराने की। तो जब सवेरे वन में जाते हैं तो ये दशा हमारे चित्त की होती है। तो हे प्रियतम, इस समय तो रात है, रात के समय आप हमें छोड़ करके वन में घूम रहे हैं, आप जल्दी आइए, जल्दी आइए, हम इतनी दासियां हैं, आपके चरण कमलों की सेवा करेंगे, आप मत वन में रहिए रात के समय। तो रोने लगी तो इसे सुनकर भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए, गोपी गीत में वर्णन। तो सवेरे का समय तो दुखद होता है जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर वन में जाते हैं, पर वनवासी भी तो उधर व्याकुल रहते हैं, वन में रहने वाले कोल भील और पशु पक्षी पौधे पेड़ पौधे भौंरे मयूर आदि सब प्रतीक्षा करते हैं कि कब श्याम सुंदर वन में आएंगे, वृंदावन में दिन भर हमारे साथ रहेंगे, हम देखेंगे। लेकिन भगवान को तो सब और देखना है, तो सबके हैं, तो वृंदावन में दिन भर विहार करते हैं, वनवासियों को सुखी करते हैं। पर शाम के समय जब ब्रज में लौटते हैं तो गोपी जनों के लिए ये महा आनंद महोत्सव का समय होता है। बहुत कवियों ने इस पर गान किया है अनेक पदों में, बहुत अच्छा लगता है गाने में भी। हमने भी कुछ पदों का चयन किया है, कहीं कहीं यहां मेरे पास नहीं है। ये आवनी लीला ब्रज में चूंकि गोपियों के आनंद की लीला है और ब्रज में माता पिता के लिए भी, और ब्रज में जो अस्थिर है स्थिर है जो ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं उनके लिए भी परम आनंद का दृश्य होता है, इसलिए इस लीला को वैष्णव भक्तों ने बहुत पसंद किया, वृंदावन से ब्रज में आने की लीला। इसको संध्या लीला या आवनी लीला भी कहते हैं, आगमन की लीला। और गो संभालन का छल श्री कृष्ण ऐसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं, हमारी गाय इधर गई क्या, तो अगर गोपी तो चकित होकर केवल मुख देखती है भगवान का, तो आपको परिचय बताऊं कैसी गाय है, आपको परिचय बताऊं, तो परिचय बताने में श्री कृष्ण को भी तो डर है कि कोई स्वजन न देख ले, परिजन न देख ले और वो भी बलराम जी से बच करके आना होता है। चलते समय ब्रज वृंदावन जाते समय भी भगवान देरी करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी बीच बीच में पुकारते रहते हैं, कन्हैया। एक लीला है कि एक बार एक गोपी ने उनको पकड़ लिया था माखन चुनकर, तो वो कहती है सुनो सुनो बलदाऊ पुकार रहा है, भैया पुकार रहा है, अगर आज ये पता लग गया कि चोरी में पकड़ा गया है तो मेरी तो नाक कट जाएगी, तो मेरा विवाह आदि भी नहीं होने पाएगा। और पहले से ही वो हल्ला करता है कि ये चोर है, तो हमको जाने दो जाने दो जाने दो, तो कहते नहीं 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 छोड़ूंगी। सवेरे सवेरे माखन की चोरी में पकड़ेगा बचपन में। तो बलराम जी देखते हैं कहां गया, क्या पता कि किसी घर में जाकर के चोरी किया और पकड़ लिया गया है। तो अगर देख लेगा बलराम तो जाकर के मां यशोदा से कहेगा, इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं छोड़ दो छोड़ दो, अब कान पकड़ता हूं कि तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। गोपी कहते नहीं 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 छोड़ूंगी, तुम शपथ लो कि रोज आओगे तब छोड़ूंगी, नहीं तुम नहीं। इस तरह से मथुरा की स्त्रियां मथुरा के उस रंग भूमि में शोक में डूबी हुई है। भगवान श्रीकृष्ण अपनी लीलाओं द्वारा अपने भक्तों को पीड़ा भी देते हैं, लेकिन वो पीड़ा पीड़ा नहीं है, वे जानते हैं कि ये मिथ्या शोक कर रही हैं। हमारा अपार बल है ये हमारे आगे ये सब मल्ल क्या करेंगे, मैं सबको मारूंगा, लेकिन फिर भी कुछ काल के लिए वे स्नेह का दुख देते हैं। ये दुख दुख नहीं है, ये महासुख है वास्तव। कृष्ण के हित की बात सोच करके, कृष्ण के विषय में कोई बात सोच करके दुख होता है तो यह एक महान सुख में पर्यवसित होता है, इसलिए दुख नहीं है। तो इसके बाद वर्णन है कि जब भगवान ने स्त्रियों के सभय वचन को सुना, जब दंगल कर रहे थे उसी में आवाज सुन ली है कि इस तरह से बोल रही हैं कि मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है और मुझे पराभूत किया जा रहा है, रो रही हैं, हृदय में बहुत तकलीफ है, तो भगवान तुरंत चारुण को मारने की इच्छा कर ली। हंतुम मनश्चक्र, मन में कर ली। हरीश्वरी जी इस विषय पर लिखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के मिथ्या भूत भय डर शोक को भी दुख को भी सहते नहीं, यदि मिथ्या शोक हो रहा है, भगवान को न तो कोई परिश्रम है और न तो कोई पराभव है, मथुरा में भी वे नित्य विजयी हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण कोई बहुत परेशानी में संकट में फंस गए हैं जिसके लिए स्त्रियां शोक कर रही हैं, उस समय भी वे पूर्ण सुख में हैं, पूर्ण आनंद में हैं। यह तो उनकी लीला की विशेषता है कि मुख पर पसीने के बूंदे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इससे भगवान वास्तव में बिल्कुल थक नहीं गए हैं या उनको इस तरह से दुर्दशा में नहीं पहुंचाया जा सका है। पर फिर भी भगवान अपने भक्तों के इस मनह पीड़ा को जो मिथ्या है उसको भी नहीं सह सके। कृष्ण इतने दयालु हैं, वो भी जब सभय वचन सुने तुरंत मारने की इच्छा की, इनके मन में बेकार दुख हो रहा है, ये भी नहीं होने दूंगा, हो हमारी बात सोच करके स्त्रियां दुखी हो रही है, वो भी सहन नहीं कर सके, अतः तुरंत अब शत्रु को मारने की इच्छा कर ले, संकल्प कर ले। तो फिर से युद्ध तो हो ही रहा था, होते होते अब बढ़ता गया और इसके बाद भगवान ने मारा। तो भगवान ने तीन पहलवानों को मारा, सल तोसल और चारुण। सल तोसल से तो लड़े ही नहीं, जब भगवान ने चारुण का वध कर दिया और श्री बलराम जी ने मुष्टिक और कूट का वध किया तो दो पहलवान सोचे कि एक साथ इसको उठा करके टांग पकड़ दे, पटक दे, तो एक पैर उठाने के लिए सल आया तो सल आया तो उन दोनों को फुटबॉल की तरह उनके सिर पर ऐसा मारे कि सिर फट गया दोनों का, वो गिर गए, उनके साथ लड़ना नहीं पड़ा। भागवत में वर्णन है और कल इसका वर्णन आएगा किस तरह से पहलवानों को मार रहे हैं। और इसके बाद जब पहलवानों को मार दिए दोनों भाई, इसके बाद श्रीदाम मधुमंगल सुबल आदि को बुलाए, चलो अब राजा का मनोरंजन करें, चलो। अब वो लोग आ नहीं रहे थे संकोच से, लेकिन कृष्ण किसी को बलराम जी पकड़ करके ला रहे हैं, चलो असली अब मल्ल क्रीड़ा हम लोग करें। तो भगवान जब अपने सखाओं के साथ करने लगे तो इसको कौन से देखा, जब दंगल होने लगा तो बाजा और बजने चालू हुआ, पहलवान मारे गए हैं और बाजा बज रहा है। सब बाजा किसका था, सब कंस का था, लेकिन वो लोग इतना खुश हुए कि लगे बाजा बजाने, लोग जय जयकार, जय हो कृष्ण की जय, बलराम की जय, ऐसे सारे मथुरा के नर नारी उत्सव मनाने लगे। इसको सुन करके कंस एकदम तिलमिला गया, बंद करो बाजा, बंद करो बाजा। और बाजा बजाने वाले इतने उमंग में थे कि सुन नहीं रहे थे, और कहा बंद करो बाजा, और बोल रहा था, कोई बाजा बंद नहीं हो रहा था। सबसे पहले वसुदेव के इन दोनों लड़कों को निकालकर बाहर करो, बाहर पर कौन है कि बाहर करे, पहलवान जब इस तरह से मारे गए तो किसकी हिम्मत थी कि वो बाहर करे। ये दोनों दुर्वृत्त हैं, इनका आचरण बहुत खराब है, अर्थात दुर्वृत्त का अर्थ दुर्गम, इनका आचरण समझ में आना कठिन है, सरस्वती जी अर्थ कर, इनको बाहर करो और दुर्मेधा वसुदेव का वध करो, हमसे क्या कहा और अपने इस बेटा को पहुंचा करके आधी रात को छल से आया है,
यह झूठा आदमी है, इसका वध करो और नंद का भी वध करो, दोनों को मारो। और मेरा पिता उग्रसेन है लेकिन वो भी वध करने योग्य है, उसको भी मारो, इसको मारो और नंद का सारा धन छीन लो। बाप रे, गाय चराने वाले बेचारे के पास धन क्या है, नंद का धन छीन लो और ये करो ये करो। कोई कुछ नहीं कर रहा, कौन आज्ञा पालन करे। लेकिन ये लोक में देखा जाता है, घबराया हुआ आदमी कहता है ये करो ये करो ये करो वो करो ये करो, कौन करने वाला है। एक बार की बात है, हमारे गांव पर कृष्णावतार ड्रामा चल रहा था, अभिनय हो रहा है, और अयोध्या के एक महात्मा थे, वे कंस बने हुए थे, तो उनका दरबार लगने वाला था, कंस का, कंस आने वाला था। एक हमारे गांव का व्यक्ति वो द्वारपाल बना हुआ था, जो ये सूचना देता था, सावधान सावधान, महाराज कंस पधारने वाले हैं। तो पहले ही पधार चुके थे, वो कंस बैठ गए थे सिंहासन पर, बेचारे उसको ध्यान नहीं था, यही पार्ट दिया गया था कि इतना ही बोलना है। उसको ध्यान नहीं रहा, पहले बोलना चाहिए था, वो बोला नहीं, आ करके लगा बोलने में, सावधान सावधान, राजा धीराज कंस जी पधारने वाले हैं। तुम कंस बने हुए रामायणी जी, वो बोले चुप शैतान, पागल हो गया है क्या, मैं यहां आ गया हूं और तुम बोल रहे हो। तो वो इतने निराश हुए, अब इतना ही बोलना था, इसके बाद तो कोई बोला नहीं, तो नाटक खत्म हुआ। तो कहते हैं हम लोग, हमको आप लोग यही सिखाए थे कि यही बोलना है, और बोलने पर और डांटते हैं। ऐसा नाटक, यही सिखाए थे और बोले। रामायणी जी ने कहा चुप जाओ, तुम यहां से जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। तो वे नहीं समझ रहे थे कि ड्रामा में डांट रहे हैं, ये डांटने को एकदम सत्य मान लिए। तो इस तरह से कंस जो बोल रहा है, वसुदेव के इन दोनों दूषित लड़कों को यहां से बाहर करो, ये लोग बदमाश हैं, क्योंकि अभी अभी सेना को मारे, हाथी को मार दिए, पहलवान बेचारे लड़ रहे थे इनको मारे, तो इन दोनों को यहां से बाहर करो। ये नहीं कहा पकड़ो और मारो, ये कहने का साहस नहीं, इनको बाहर करो, बाहर कौन करे, और वसुदेव का वध करो, नंद का धन हर लो, और उग्रसेन को कारागृह में बंद करो, बाप होने से क्या हुआ। सर कर रहा था तब तक तो भगवान श्री कृष्ण वहां से बहुत फुर्तीले हैं, ही तुरंत उस ऊंचे आसन पर छलांग मारे और चढ़ गए, और जाकर के उन्होंने उसका केस पकड़ा, केस पकड़ने में मुकुट गिर पड़ा, ऐसे जब केस पकड़ना चाहे तो मुकुट गिर गया, केस पकड़ करके वहां से अखाड़ा में फेंके, ऐसे जोर से अखाड़ा में फेंके, और इसके बाद वहीं से कूदे उसके छाती पर, फिर धीरे धीरे नहीं उतरे, छाती पर कूदे, और उनके कूदने से विश्व के आश्रय हैं भगवान पद्मनाभ, सारा भार भूमंडल का लेकर ब्रह्मा में कूदे, कूदते ही कंस मर गए। आप जरा सोचिए, आप यहां जय जयकार कर रहे हैं, उस समय कितना जय जयकार हुआ होगा। तो मल्ल वध और कंस वध की कथा कल सवेरे पूरी की जाएगी, और शाम के समय भगवान कारागृह में जाकर अपने माता पिता को छुड़ाएंगे, देवकी वसुदेव। हरे कृष्ण।